हम सब यहां पर जमा हैं, हम ये जानते हैं कि गुज़िश्ता रात तारीख की एक ऐसी अजीम रात गुजरी है कि जिसमें दुनिया का एक शैतान रहमानी ताकतों के हाथों ऐसा जलील और रुस्वा हुआ कि जिसकी आज से पहले तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। आप सहूनी ज़राए अबलाग पर जाकर देखें तो हमें मिलता है कि खुद सहूनी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि जो कुछ कल रात ईरान की तरफ से किया गया, इससे पहले ना कभी तारीख में सहूनियों ने इस बारे में सोचा था और ना कभी उनके ख्वाबो ख्याल के अंदर था। वो खुद अभी महवे हैरत हैं, वो खुद इस कदर परेशान हैं, मुस्तरिब हैं और इस सोच विचार के अंदर हैं कि आखिर इसका जवाब किस तरह से दिया जाए। बिल बिला रहे हैं, परेशान हैं और एक कर्ब की कैफियत से वो गुजर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये गासिब सहूनी हुकूमत इसी कर्ब और मुसीबत के अंदर रहती हुई नाबूद हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपके सामने एक दो बातें करना चाहता हूँ कि पहली बात कि हमारे ये नौजवान भाइयों ने, आईएसओ के दोस्तों ने ये जो इकदाम किया है इसकी जितनी तहसीन दी जाए ये कम है। और आप जो इस ख़राब मौसम के अंदर, बारिश के मौसम के अंदर अपने बच्चों के साथ, ख़ास तौर पर ख़वातीन घरों से निकलकर यहाँ पर आई हैं, ये बहुत बड़ा एक इनकलाबी कदम है। इस पर जितना दुरूद व सलाम किया जाए मैं समझता हूँ कि ये कम है। इस वक्त आलमी ज़राए अबलाग पर दो किस्म की बातें हो रही हैं। एक ग्रोह है जो मगरबी हुकूमतों का ग्रोह है, वो ग्रोह इस वक्त सर जोड़कर सलामती कौंसिल के इजलास में बैठा हुआ है। ये इजलास, सलामती कौंसिल का इजलास, गासिब सहूनी हुकूमत की इमाम पर आज बुलाया गया है। इस इजलास के अंदर ये मगरबी दोहरा मयार रखने वाली हुकूमतें, बल्कि आप मुझे कह लेने दीजिए कि गजा में जिस तरह से मुनज़्ज़म जेनोसाइड किया गया है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज जेनोसाइड किया गया है फलस्तीनियों का, मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि मगरबी हुकूमतें ना सिर्फ डबल स्टैंडर्ड्स बल्कि ये स्टैंडर्ड हो चुकी हैं, इनका कोई मयार बाकी नहीं है। ये बेहिस और गैर इंसानी रवैया रखने वाली हुकूमतें आज सलामती कौंसिल के हॉल के अंदर जमा है और ये सोच विचार कर रही है, ये कह रही है कि ईरान ने जो ये कार्रवाई की है गुज़िश्ता रात, इसकी मजम्मत की जाए। लेकिन आप देखिए दुनिया के दूसरी तरफ एक और लाइन है, ऐसे भी ममालिक खड़े हैं जो इस वक्त इन आलमी ताकतों के घमंड, इनके तकब्बुर के सामने ये अलल ऐलान कह रहे हैं कि हम इस काम की मजम्मत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मेरी बहनों और भाइयों, अक़वामे मुत्तहिदा जिसके हॉल और फ्लोर के ऊपर आज ये ज़ालिम हुकूमतें बैठकर ईरान के खिलाफ मनसूबाबंदी कर रही हैं, इसी अक़वामे मुत्तहिदा का चार्टर आर्टिकल 51 ये कहता है, यूएन चार्टर आर्टिकल 51 जाकर पढ़ लीजिए, ये कह रहा है कि अगर कोई भी रियासत किसी दूसरी रियासत के अंदर दाखिल होकर उसकी तंसीबात को निशाना बनाए, तो बिला जवाब निशाना बनाए, तो उसका मतलब है कि उस रियासत को यह हक हासिल है कि वो इस दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करे। लिहाजा जो कुछ दमिश्क में ईरान के सफारतखाने पर हुआ हमने देखा, गासिब सहूनी हुकूमत ने दमिश्क में ईरान के सफारतखाने पर, ईरान का सफारतखाना किसी भी मुल्क का सफारतखाना किसी दूसरी सरजमीन के ऊपर उसकी तंसीबात समझा जाता है, उसकी सोवरेन प्लेस समझा जाता है। इसराइल ने सोवरेनिटी के ऊपर हमला किया तो खुद ब खुद आर्टिकल 51 के तहत वो ईरान का हक बन जाता है, वो उसका कानूनी, सियासी और इखलाकी हक बन जाता है कि वो इसराइल को पनिश कर
बराबर है। और यदि कुछ कल रात हुआ, जो कुछ ईरान ने किया ये एक जवाबी कार्रवाई है, और ये जवाबी कार्रवाई सिर्फ एक कार्रवाई है, कोई जंग नहीं, कोई बड़ा हमला नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि ये एक जवाबी कार्रवाई है। अगर इसके बदले में अमरीका या इसराइल किसी ने भी इसके बदले में ईरान के खिलाफ कोई मुहिमजोई की, तो फिर इससे बड़ा जवाब भी दिया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि कल रात सिर्फ 726 मिसाइल्स, ड्रोन्स और छोटे रॉकेट्स गासिब सोहनियों ने अपने डिफेंस सिस्टम के जरिए रोका है। ना सिर्फ सोहनियों का डिफेंस सिस्टम, बल्कि अमेरिकन डिफेंस सिस्टम भी काम कर रहा था, ब्रिटिश डिफेंस सिस्टम भी काम कर रहा था, और जॉर्डन का डिफेंस सिस्टम भी काम कर रहा था। चार डिफेंस निजामों ने मिलकर ईरान के 726 ड्रोन्स, मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने की कोशिश की, और उन्होंने रोका। लेकिन उसके बावजूद 50% से ज्यादा मिसाइल जाकर दो फौजी ठिकानों पर लगे। एक फौजी ठिकाना जो उनका इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है, अभी तक की इतलात के मुताबिक वहां पर 70 से ज्यादा इंटेलिजेंस अहदेदार हलाक हुए हैं। पूरा इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर तबाह बर्बाद हो गया है, और दूसरा मकाम जो गजा के करीब है, जो शहराए नकब के अंदर जो इनकी एयरबेस है, वहां के ऊपर जो हमला किया गया है, वो एयरबेस इस वक्त तक नाकारा है। उसको दोबारा काम में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कहा यह जा रहा है कि कई दिन और शायद महीने लग सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो दो मकाम हैं, इन दोनों मकाम से दमिश्क के ईरानी सफारतखाने पर हमले की प्लानिंग हुई, और दमिश्क पर होकर जाने वाले जो जंगी जहाज थे वो इधर से होकर गए। और यही वो एयरबेस है जो गजा के अंदर आपके मासूम जान भाइयों को, आपके बच्चों को रोजाना F-35 जहाज उड़ाकर कत्ल करते थे। कल रात गजा सुकून की नींद सोया है, गजा के बच्चे चैन की नींद सोते रहे, क्योंकि इस एयरबेस पर आपके ईरानी भाई, आपके ईरानी जाबाज इस एयरबेस के ऊपर हमला आवर थे। और ये हमला सिर्फ ईरान से नहीं था मेरी बहनों और भाइयों, ये बड़ा ही कैलकुलेटेड हमला था। जो लोग जंगी जबानों को समझते हैं वो ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर ना सिर्फ अमेरिका को पैगाम दिया गया है, ना सिर्फ बरतानिया को पैगाम दिया गया है, बल्कि पूरी दुनिया के जालिम निजामों को ये बता दिया गया है कि अगर किसी भी जगह पर घुसकर किसी की खुद मुख्तारी को चैलेंज करोगे तो तुम्हें अमान नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। बस आखिर में मैं यहाँ पर मीडिया के हमारे भाई कैमरामैन, फोटोग्राफर साहबी भाई यहाँ मौजूद हैं, मैं इनके लिए कहता हूँ कि हमारा ये मुतालबा है आज फिर यहाँ से कि गजा के ऊपर जंगबंदी फुल फोर की जाए, जारियत को बंद किया जाए। गजा पर जो जारियत है, जिसे आज 190 दिन हो चुके हैं, इस जारियत का जिम्मेदार बराह रास्त आलमी दहशतगर्द अमरीका है। हम ये समझते हैं कि इस जारियत को बंद होना चाहिए, और गजा से हमास के मुतालबात के मुताबिक, हमास की शराइत के मुताबिक वासिफ सोहनी फौज को निकलना चाहिए, गजा को रीबिल्ड होना चाहिए। और इस सब के अंदर दुनिया की मुसलमान अकवाम को, मुसलमान हुकूमतों को आगे बढ़कर किरदार अदा करना चाहिए। मैं यहाँ पर इस स्टेज से हुकूमत पाकिस्तान से भी यह मुतालबा करता हूँ कि आपके दफ्तर खारजा ने बड़ा ही शर्मनाक बयान जारी किया है। ये पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क के लिए, उस पाकिस्तान के लिए कि जो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है, जो अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है, ये स्टेटमेंट इस पाकिस्तान की तौहीन है। इस दफ्तर खारजा के बयान में आपने इसराइल की मजम्मत तक करना गवारा नहीं की। हमें ये कबूल नहीं है, हमें वो पाकिस्तान चाहिए, हमें वो पाकिस्तान चाहिए जो कायद आजम का पाकिस्तान है। और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान ये कहता है कि इसराइल एक नाजायज रियासत है, इसराइल اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے اور پاکستان اسے تسلیم نہیں کرے گا. اگر آج دفتر خارجہ نے یہ کمزور بیانیہ جاری کیا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں اندر کالی بھوڑے موجود ہیں. یہ کالی بھوڑے اسرائیل کے ساتھ نرم گوشہ اختیار کر رہی ہیں. یہ کالی بھوڑے اندرون خانہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کی جو ناکام کوشش کر رہی ہیں ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. کیا آپ اسے سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستان کو اسرائیل کا دوست ہونا چاہیے؟ کوئی یہ نہیں سمجھتا. پاکستان کا بچہ بچہ اس حکومت کے سامنے آئینی دیوار بن جائے گا. میں حکمرانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈرے اس وقت سے کہ جب نوجوانوں کے ہاتھ آپ کے گروبانوں تک آ جائے اور پھر وہ وقت گزر جائے. لہذا ابھی بھی وقت ہے. ایک ایسا عوامی اور شاندار بیانیہ ہونا چاہیے جو ہر پاکستانی کی آواز ہو. آج ایران کی اس کاروائی کے اوپر نہ صرف پاکستان کا مسلمان خوش ہے بلکہ پاکستان سے باہر دنیا اسلام کا ہر مسلمان اس پر خوشیاں منا رہا ہے. کل مقبوضہ بیت المقدس کے اندر مسجد اقصا کے اندر آدھی رات کو جشن ہو رہے تھے. فلسطینی شکریہ ایران کے نعرے لگا رہے تھے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس عالمی سیاست کے منظر نامے پر پاکستان جیسا ایک بڑا باصلاحیت ایٹمی اور طاقتور فوج رکھنے والا ملک کیا اس طرح کے کمزور بیانیے کا متحمل ہے؟ کیا آپ اس بیانیے کو تسلیم کرتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں اس بیانیے کو واپس لو. ایک ٹھوس بیانیہ دینا چاہیے. چونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا لہذا کھل کر یہ کہنا چاہیے کہ ایران کی جوابی کاروائی اس کا قانونی حق ہے اور ہم اس حق کے ساتھ ہیں. یہی حکومت کو زیب دیتا ہے. میں انہی کلمات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آرگنائزرز کا، آئی ایس او کے جوانوں کا، آپ اپنی ماں بہنوں کا، جوانوں کا، بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک ناچیز طالب علم کی آپ نے اتنی باتیں سنی. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.